श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 25 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, थोड़ा विचार करेंगे उसके ऊपर। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूछते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। कोई हम थोड़ा सा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कमेंट्री को देखेंगे, फिर श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य को भी देखेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये प्रश्न उठाते हैं पिछले श्लोक से कनेक्ट करते हुए, भगवान बोल रहे हैं न तु मामहं भी जानन्ति तत्वे न तश्च्वनन्तिते। जो व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता हैं और प्रभु हैं, तो उस तत्व को ना जानने के कारण व्यक्ति नीचे गिरता है, अर्थात इस भौतिक जगत में ही फंसा रहता है, भले ही वो अन्य देवताओं की पूजा क्यों ना करता हो। तो प्रश्न ये उठाते हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं उन नियमों के अनुसार, मतलब जो उन ग्रंथों में वर्णन किया गया है जिसमें देवताओं की पूजा को समझाया गया कैसे करना है, तो उसमें गलती क्या है। भाई वैष्णव जो हैं वो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं शास्त्र उन शास्त्रों के अनुसार जिसमें भगवान विष्णु की उपासना बताई गई है, और देवता के उपासक देवताओं की उपासना कर रहे हैं उन पुस्तकों के अनुसार उन ग्रंथों के अनुसार जिसमें देवता की उपासना बताई गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फिर ये देवता के उपासक नीचे क्यों गिरते हैं, क्यों ये शाश्वतता को प्राप्त नहीं होते, तो गलती क्या है। जब ये उपासक ग्रंथ के अनुसार शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो उसमें गलती क्या है, ये प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं ये सत्य है, लेकिन नियम क्या है कि जो देवता, जैसे यहां बता रहे हैं यान्ति देवव्रता, तो जो व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है वो एक विशिष्ट प्रकार के देवता को प्राप्त करता है, और क्योंकि देवता स्वयं नाशवान हैं इस कारण से जो देवता का उपासक है वो अनाशवान कैसे हो पाएगा। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि भगवान के भक्त शाश्वत हैं। क्यों शाश्वत हैं? क्योंकि भगवान जिस प्रकार से शाश्वत हैं उसी प्रकार से उनके भक्त भी शाश्वत हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया एक गलती। तो श्रुति और स्मृति संबंध में, यानी आत्मा और भगवान के शाश्वतता के संबंध में बोलती हैं, भगवान एक शिष्यते शेष संज्ञः, उस समय आप ही रहे थे अनंत के रूप में, यानी कि जब प्रलय हो गई थी। एको नारायण एवासी न ब्रह्म न शंकर, नारायण ही रहते हैं न ब्रह्मा रहते हैं न शिव रहते हैं प्रलय के बाद। ये महाउपनिषद का है श्लोक। परारार्धन्ते सुबुद्धिता गोपरूपो में पुरस्तद अवीर आवीर बभूव, ब्रह्मा जी की रात्रि के बाद योग निद्रा से जागृत होकर के, अर्थात भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत हुए और ब्रह्मा जी के सामने एक गोप के रूप में प्रस्तुत हुए। ये जैसे जैसा गोप रूप उन्होंने पहले सृष्टि की शुरुआत में दिखाया था, तो ये गोपाल तपने उपनिषद का श्लोक है। न च्यवन्ते च मदभक्ता महती प्रलयेपि, भगवान श्री कृष्ण स्कंद पुराण में कह रहे हैं कि मेरे भक्तों का नाश प्रलय के समय भी नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से हमने आचार्य समझाते हैं कि क्यों देवताओं के भक्तों को शाश्वतता प्राप्त नहीं होती, लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त अमरत्व को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य को देखेंगे श्रील प्रभुपाद के। यदि कोई चंद्रमा सूर्य अन्य लोकों को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। यानी वैदिक शास्त्रों में अलग अलग देवताओं को उनकी पूजा करने के नियम बताए गए हैं, और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से पूजा करता है तो फिर वो विशिष्ट प्रकार के देवता को प्राप्ति करता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्म कांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। तो ये तो स्पष्ट है कि कर्मकांड का पालन करके व्यक्ति विभिन्न देवताओं के लोकों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों को लोकों में जाकर यक्ष रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। तो ये तो स्पष्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे व्यक्ति के गुण होते हैं उसी प्रकार से उसका इष्ट होता है और उसी प्रकार से उसकी गति होती है। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अध्यात्म मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, अन्यथा इस प्रकार की जो पूजा पाठ है इस सभी को हम अध्यात्मवादी नहीं कह सकते। इस चीज़ की हमने चर्चा 8वें अध्याय में करी थी कि भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा का नित्य स्वरूप है उससे संबंधित क्रियाकलाप आध्यात्मिक कहलाते हैं। तो इसलिए ये जो भूत प्रेत की पूजा है ये निश्चित रूप से आध्यात्मिकवाद नहीं है, अपितु भौतिकतावादी है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्णलोक की प्राप्ति करता है ना। इसी तरह का अर्थ क्या है? इसी तरह का अर्थ ये है कि जैसे देवी देवता लोग, सॉरी क्षमा कीजिएगा, देवी देवता के उपासक शास्त्रों में वर्णित देवी देवताओं की पूजा के विधान का पालन करके उनके लोकों को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त शास्त्र के अनुसार, श्रुति स्मृति के अनुसार जो नियम है उनका पालन करके भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करता है। कृष्ण की भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने मन माने ढंग से भक्ति करेंगे, तो ये समझ में आना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, क्योंकि ये लोग प्रामाणिक रूप से भगवद गीता को सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है। एक व्यक्ति अभी हमारे भक्त को बोले कि भगवद्गीता तो आप 10-12 साल के लिए छोड़ ही दो, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्त कहते हैं अरे नहीं, भगवद्गीता के बिना तो मैं भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता, तो इस प्रकार से मैं कैसे छोड़ दूं। तो ऐसे गुरु घूमते रहते हैं बहुत सारे, अतः ना जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। नीचे क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि कृष्णलोक के बारे में विचार है नहीं, पता नहीं है, तो देवताओं की उपासना सहज रूप से करेंगे तो इस जगत में फंसे रहेंगे। भगवान के धाम जाने का उनको मौका ही नहीं मिलेगा। यहां तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसको हमने पहले भी समझाया था कि जो ब्रह्म पद को भी प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म ज्योति को भी प्राप्त कर लेता है, उसको भी नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि वहां कृष्ण की सेवा का सुख प्राप्त नहीं होता और जीवात्मा का स्वरूप है सेवक का। तो वह खाली टंगे रहना ब्रह्म ज्योति में कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, काफी समय के लिए भी अच्छा लग सकता है, लेकिन फिर वापस व्यक्ति इस जगत में गिरता है। इसको पुष्टि श्रीमद् भागवत में होती है, आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ति नादृत युष्मात् पदांग्रह। भगवान के चरणों का अपमान करने के कारण व्यक्ति ब्रह्म पद से भी वापस नीचे गिर जाता है, भौतिक जगत में आ जाता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। थोड़ा देखना चाहिए, एक सूक्ष्म बात है कि अन्य देवताओं के लोकों में जाने के लिए ये योग्यता नहीं चाहिए कि हमें भौतिक इच्छा ना हो। अभी तो आप जानते हैं कि जब भौतिक इच्छा होगी तभी देवताओं की पूजा करेगा और वो देवताओं के लोक में जाएगा, लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए हमको शुद्ध होना पड़ेगा, भौतिक इच्छाओं से विरत होना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए निरुत्साह होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से अगर व्यक्ति पूरी तरह से कामनाओं से युक्त भी क्यों ना हो, वो भगवत कृपा से धीरे धीरे करके पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और भगवान दायित्व लेते हैं कि वो भक्त जो है अंततोगत्वा उनके धाम की प्राप्ति करे। तो आपने सूक्ष्म अंतर ये देखा कि भगवान के भक्त भगवान के पास तो जाते हैं, लेकिन अगर उनकी कोई भौतिक इच्छा है तो पहले इस जगत में भौतिक इच्छा पूर्ण हो जाती है और भगवान की भक्ति करते करते वो शुद्ध हो जाते हैं और फिर जाते हैं। लेकिन इसमें समय कितना भी लगे, लेकिन ये विचार करना चाहिए, क्योंकि लाभ अनंत है तो प्रयास तो इसके लिए ही करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी पूजा आप 6 महीने करो और मैं आपको 100 रुपये दूंगा, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि आप नहीं, 4 साल हमारी पूजा करिए और मैं आपको $करोड़ों दूंगा। तो व्यक्ति जो बुद्धिमान होगा वो सोचेगा ठीक है, मुझे भले थोड़ा अधिक समय लगे लेकिन थोड़ा प्रतीक्षा कर सकता हूँ, अब मुझसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार से भगवान के कृष्ण की भक्ति में ऐसा लग सकता है कि प्रगति बहुत धीरे धीरे हो रही है, जो भी कुछ है, लेकिन एक बात तो ये है कि इसमें प्रगति परमानेंट होती है, हम पीछे नहीं जाते हैं, और अंततोगत भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, जो सबसे बड़ा लाभ है, अनंत लाभ है, जहाँ पे अनंत सुख है, अनंत जीवन है। मान लीजिए अनंत सुख होता लेकिन खाली 1-2 घंटे के लिए होता तो भी दिक्कत होती, नहीं, अनंत सुख है और अनंत समय के लिए है। तो अब प्रश्न ये आएगा कि क्या भगवान की पूजा करना बहुत मुश्किल है, तो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।